ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इन पांच राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में 7 नवंबर और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण और मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। राजस्थान की अधिसूचना 30 अक्टूबर को और तेलंगाना में 3 नवंबर को जारी होगी। नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। पांचों राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें हैं और 16 करोड़ मतदाता हैं। इन चुनावों में लगभग 60 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने आज नई दिल्ली में व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद खेल, समुद्री उद्योग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तंजानिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना, डिजिटल प्रौद्योगिकी उपयोग और व्यावहारिक जहाजों की गतिविधियों की पूर्व सूचना साझा करने के क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान दोनों देशों ने संबंधों का रणनीतिक साझेदारी तक विस्तार किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत तंजानिया संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भारत और तंजानिया रक्षा क्षेत्र में सहयोग की 5 वर्षों की रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति 4 दिन के राजकीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। सिक्किम में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राज्य की स्थिति के बारे में आज एक समीक्षा बैठक की। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल हो गया है। आज 80 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्य सचिव ने बताया कि 28 राहत शिविर में 6,800 से अधिक लोगों ने शरण ली। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि 11 से 13 अक्टूबर तक मौसम अनुकूल रहने का अनुमान है। एनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए राज्य में 6 टीमें तैनात की गई हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने आज सिरवानी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ में सिरवानी का पुल बह गया था, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग था। श्री तमांग ने पुल के पुनर्निर्माण का काम तेज करने पर जोर दिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एनसीडीसी की 89वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत एक मॉडल निवेश गंतव्य बन गया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा की गई विभिन्न पहलों, विशेषकर सागरमाला परियोजना के कारण पिछले दशक में भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और माल लदान क्षमता कई गुना बढ़ गई है। आगामी ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट के 3rd संस्करण के बारे में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस सम्मेलन में 40 से अधिक देश भाग लेंगे। इसमें करीब 300 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसराइल ने गाजा की पूरी घेराबंदी का आदेश दिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि नए उपायों में बिजली काटने और भोजन तथा ईंधन लेने पर प्रतिबंध होगा। इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1300 से ऊपर हो गई है, जबकि गाजा पट्टी में 1,23,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।